बात कहता हूँ उसमें वो बातें उल्ट पुलट हो तो क्रम आप ठीक कर लेना, मेरे जैसा आ जाएगा उसके अनुसार मैं कहता हूँ, और उसमें जो कमी रह जाएगी वो पूछ लेना फिर बता दूंगा, क्योंकि सब बातें सब समय में उपस्थित नहीं रहती। तो यस्य नाहंकृतो भावो, यहाँ तक तो पांच हेतु बताए सांख्य सिद्धांत से, उन पांच हेतुओं का वर्णन करके उपसंहार किया। उसमें कर्तृत्व भाव ही मुख्य है, वो कर्तृत्व नहीं होता, लेप नहीं होता, मन असत के साथ जड़ के साथ संबंध लिप्त नहीं होता तो वो करता हुआ भी बिल्कुल नहीं करता है, वो लिप्त होता ही नहीं, सब दुनिया को मारता नहीं, ये प्रकरण तो हो गया। अब इसी प्रकरण को दूसरी तरह से साफ समझाने के लिए भगवान अब दूसरा प्रकरण आरंभ करते हैं। क्यों आरंभ करते हैं कि ये कर्तापन अकर्तापन जो आया तो ये सब होता है करने से, क्रिया करने से होता है, और कर्म के हेतु बताए पंचेतानि महाभाव कारणानि विरोधे सांख्य कृतांति प्रवृत्तं सिद्धि सर्व कर्मणा, वहां संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के हेतु बताए। और यहाँ है कर्म सामने अर्जुन युद्ध करने की बात है, तो युद्ध करने की बात है, उस युद्ध करने में भी सांख्य सिद्धांत में कैसे कर्म किए जाए हैं कर्मों के विषय में ही भगवान का कहना है। इस वास्ते बहुत लोग उलझ जाते हैं, गीता तो कर्म को ही कह रही है, वास्तव में कर्म नहीं कह रही है, परंतु तो प्रसंग कर्म का है, इस वास्ते गीता सांख्य सिद्धांत है, कर्म सिद्धांत योग सिद्धांत से भक्ति के सिद्धांत से कर्म की व्याख्या करते हैं, परंतु कर्म का कहना तात्पर्य नहीं, तात्पर्य तो है जीव का कल्याण करने में, परंतु इस विषय में युद्ध करते हुए भी कल्याण किया जा सकता है, इस वजह हरेक काम करते हुए परमात्म तत्व को प्राप्त कर ले, इस उद्देश्य भगवान का गीता में विवेचन करना है। तो अब सांख्य योगी कैसे काम करता है, तो उसने बताया ज्ञानं कर्मच कर्ता च, ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना, करणं कर्म करते त्रिविधा कर्म संग्रह। तो ये श्लोक वास्तव में आत्मा कर्ता नहीं है इस विषय गई है, तीनों श्लोक ही 16, 17, 18 तीनों श्लोक आत्मा में कर्तृत्व नहीं है इस बात को सिद्ध करते हैं। अब इसका मूल श्लोक वह 18वां विवेचन 19 से लेकर के 40वें तक चलेगा विवेचन इसका। तो ज्ञानं कर्म च कर्ता, ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाताया, तो ज्ञान सबसे पहले भगवान ने ज्ञान शब्द रखा, और ज्ञानम ज्ञेयम और परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना, इनसे कर्म की प्रेरणा होती है। तो हर एक आदमी की जहाँ प्रवृत्ति होती है तो प्रवृत्ति से पहले ज्ञान होता है, और ज्ञान होता है अमुक काम करना है तो ज्ञान किस विषय को होगा वो ज्ञेय होता है, और ज्ञेय होने के बाद में ज्ञाता वैसे काम करता प्रवृत्त होता है। इसमें वास्तव में तो ज्ञाता पहले होना चाहिए फिर उसको ज्ञान फिर ज्ञेय होना चाहिए, पर तो भगवान ने पहले ज्ञान लिया, कारण के ज्ञान योग का मार्ग है, सांख्य योग का ये सिद्धांत है, तो वो सिद्धांत ठीक से बताने के लिए पहले ज्ञान ले लिया कि पहले ज्ञान होता है सांसारिक प्रवृत्ति में, पहले ज्ञान होता है और फिर क्या करना वो ज्ञेय होता है, फिर ज्ञाता तो है ही उसमें, ऐसे होता है प्रवृत्ति होती है। अब ये तीनों होने से कर्म प्रेरणा होती है, अमुक में काम करूं ऐसी प्रेरणा होती है, और करणं कर्म करते थी त्रिविधा कर्म संग्रह, करण होगा और कर्म होगा फिर कर्ता कर्म संग्रह होता है, तो इसमें भी पहले करण लिया फिर लिया है कर्म और फिर लिया है कर्ता। तो ये क्यों लिया कि ज्ञान पूर्व क्रिया करता है तो वो ज्ञान जैसा होगा उसी सिद्धि होगी, तो कर्ता अंत में ये लिया है कि कर्मों का जो संग्रह होता है उस संग्रह में कर्म और करण ये हेतु नहीं होते हैं, संग्रह के बीच में कर्ता ही हेतु होता है मुख्य, इस वास्ते कर्म संग्रह के पास में कर्ता बताया। करणं कर्म करदेति त्रिविध कर्म संग्रह, तीन प्रकार से कर्म संग्रह होता है, तो संग्रह में खास अहंकृत भाव है वो कर्ता होता है, उसी से कर्म संग्रह होता है, और वहाँ अहंकृत भाव नहीं होगा तो कर्म का संग्रह नहीं होगा, अर्थात वो कर्म अगाड़ी फलजनक नहीं होगा, ये तात्पर्य है इस क्रम रखने का। अब ऐसा क्रम रख करके अगाड़ी कहते हैं श्लोक कि ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदतः। अब यहाँ छह बात कह करके भगवान ने यहाँ तीन बात ही ली, छह बातों में से ना तो ज्ञेय के तीन भेद बताए और ना ज्ञाता के तीन भेद बताए, तो ये दो बात तो छोड़ दी और इधर कर्ण की बात छोड़ दी, तो छह बातों में से तीन बातें छोड़ दी, ज्ञानं और कर्म च और कर्ता च। तो उस पहले विभाग में तो ज्ञान ले लिया, दूसरे विभाग में कर्ता ले लिया, ज्ञानं कर्म च और कर्म ले लिया, क्रिया ले ली कर्म। तो ज्ञान और कर्म कर्ता तीन लिए। अब तीनों ही गुण भेद से तीन होते, तीन क्यों लिए गए? कि जो क्रिया है और जो करण है और जो ज्ञाता है, इसको नहीं लेने क्या कि ये उसमें हेतु नहीं होते। कैसे नहीं होते हैं? कि ज्ञाता तो हर समय रहता है, ज्ञाता के तीन भेद नहीं होते। तीन भेद होते हैं जब किसी काम में प्रवृत्त होता है तो जड़ के साथ संबंध होने से वे तीन भेद होते हैं, और तीन ज्ञाता केवल जानना मात्र जो है वो सात्विक राजस तामस नहीं होता, जानना मात्र तो निर्गुण होता है। इस वास्ते ज्ञाता के तीन भेद होते नहीं। ऐसे कर्ण के तीन भेद क्या हो? कर्ण तो इंद्रिया है, औजार है, वो तो साधन है, उसमें सात्विक राजस तामस क्या होगा? और इसमें अगर राजस तामस होता है तो एक बीच में बात बता देता हूँ, वो होता है बुद्धि में, बुद्धि पूर्वक काम करता है तो बुद्धि सात्विक राजस तामस होती है और बुद्धि के सहायता होती है धृति। इस वास्ते बुद्धि के धृति के अगर तीन भेद बनाएंगे तो कर्ण की जगह बुद्धि मुख्य होती है, बुद्धि पर काम होता है तो कार्य की सिद्धि होती है। तो बुद्धि वो होता है, तीनों भेद बता दिए। इस वास्ते यहाँ कर्ण नहीं लिया, ज्ञान कर्म च और कर्ता च त्रिधिगुण भेद था। तो ये तीन भेद बताए जिसमें सबसे पहले ज्ञान लिया। ज्ञान लेने का तात्पर्य सांख्य सिद्धांत का विवेचन करते हैं, यद्यपि संपूर्ण कर्मों में ज्ञान की मुख्यता होती है, फिर क्रिया होती है, प्रेरणा ज्ञान से ही होती है, परंतु सांख्य सिद्धांत से ज्ञान जो सब जगह परिपक्व पूर्ण परमात्मा है, सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्यम् इति अविभक्तं विभक्तेषु तद्ज्ञानं विद्धि सात्विकं, ये सब जगह परिपूर्ण एक परमात्मा तत्व है, ऐसा ज्ञान पहले कहा। अब ये ज्ञान कहने से आदमी की भ्रम होता है कि यहाँ कर्म संग्रह की बात चल रही है और ज्ञान कर रहे हैं सांख्य योग का, ये कहाँ प्रसंग की बात है, बिल्कुल उठपटांग बात दिखती है, वो उठपटांग नहीं है। वो इसलिए सार्थक है कि यहाँ सांख्य योगी के लिए ये सावधानी है, सावचेती है कि केवल विवेचन करो, विचार करो, ध्यान करो, उस समय में ये बात रहे, ऐसा नहीं मात्र कर्म करते हुए सांख्य योगी इससे नीचे उतरता ही नहीं, ये ज्ञान की ही जो मुख्यता होती है तभी उसके अहंकृत भाव नहीं होता। अगर ज्ञान की मुख्यता नहीं होगी तो कर्ता की मुख्यता हो जाएगी, कर्तृत्व अभिमान वो फंसाने वाला होता है, फिर सांख्य योग का कर्तृत्व तो छूटेगा नहीं। इस वास्ते भगवान ने सबसे पहले ज्ञान बताया, जिस ज्ञान से सब काम होते हैं, तो वो ज्ञान सांख्य योगी का ऐसा रहना चाहिए जो सात्विक है। इस तरह सात्विक ज्ञान होगा, सात्विक कर्म होगा, सात्विक ही कर्ता होगा, सात्विक ही बुद्धि होगी कर्ण में, ये होगा उससे उस सांख्य योग की सिद्धि हो जाएगी। दूसरा कार्य करने में भी ज्ञान की अपन इस वास्ते ज्ञान की मुख्यता लाए, इस ज्ञान की मुख्यता ला करके सब जगह एक परिपूर्ण तत्व को बताया। तो ज्ञान कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेद, त्रिधैव कहने का ना तो चार होते हैं ना दो होते हैं, तीन ही जो भेद होते हैं, इसके अधिक और भेद ना कम होते हैं, तीन प्रकार के भेद होते हैं। इसमें एक मार्मिक बात है कि तीन भेद भगवान बताते हैं सात्विक का ग्रहण करने के लिए, राजस तामस का त्याग करने के लिए, परंतु राजस तामस का त्याग करके सात्विक जब ग्रहण कर लेंगे तो उसमें सात्विक कर्म और सात्विक कर्ता केवल पदार्थों के साथ, प्रकृति के साथ, शरीर इंद्रियों के साथ संबंध होने से उसको सात्विक कहते हैं, वास्तव में वो निर्गुणी है। जैसे पहले कहा कि यस्य न अहंकृतो भावो और बुद्धि यस्य न लिप्यते, अहंकृत भाव नहीं बुद्धि लिप्त नहीं है, तो अहंकृत भाव से वो कर्म बनता है और बुद्धि के लिप्त होने से कर्म बनता है। ये निर्लिप्त रहने से सांख्य योगी अपने स्वरूप में स्थित वैसे ही रहता, क्रिया करे और चाहे न करे उसकी एक अवस्था ही सदा रहती है, परंतु संसार की दृष्टि से उसके सात्विक कर्म होंगे। इस वास्ते गुण के भेद से सात्विक राजस तामस बताए हैं, वास्तव में वो निर्गुण तत्व में निरंतर स्थित है। इस बात को लेकर ये प्रकरण चलता। जानना जो चीज होती है वो जानना एक तो इंद्रियों के द्वारा होता है और एक बुद्धि के द्वारा होता है, एक स्वयं के द्वारा होता है। तो जहाँ इंद्रियों के द्वारा अंतकरण द्वारा जानना होता है, उस जानने में तो त्रिगुणात्मक भेद हो सकते हैं, परंतु स्वयं अपने आप को जानता है उसमें तीन भेद नहीं होते। कारण उसका क्या है, ज्ञाता वही रहता है, सब काम करते हुए ज्ञाता वही रहता है, परंतु ज्ञाता के सांसारिक विषय में चलेगा तो वहाँ बुद्धि और इंद्रियों को साथ में लेकर काम करेगा, तो इनको साथ लेकर काम करेगा तो वो ज्ञाता नहीं रहेगा, वो कर्ता हो जाएगा, ज्ञान का कर्ता। तो वहाँ तीन भेद हो जाएंगे, परंतु ज्ञाता असली चीज है, अपने स्वरूप में स्थित रहता है, वो ज्ञाता होता है। अब ध्यान देना बात, वो ज्ञाता ज्ञान क्या है, उसका ज्ञाता का स्वयं का ज्ञान क्या है, कि जैसे हर एक आदमी की ये ज्ञान है कि मैं हूँ, अपने होनापन का ज्ञान है, तो इस होनेपन के ज्ञान में केवल ज्ञान मात्र है, इसमें कोई प्रवृत्ति नहीं है। और बुद्धि के द्वारा इंद्रियों के द्वारा किसी का ज्ञान होगा तो उसमें प्रवृत्ति होगी, अर्थात उसमें क्रिया होगी, क्रिया से ज्ञान होगा उनका। और अपना होनापन है, इसमें बुद्धि की भी जरूरत नहीं है, किसी की भी जरूरत नहीं है। यहाँ एक गुत्थी है गहरी, वो ये है कि दार्शनिक लोग कहते हैं ज्ञान होगा तो कैसे होगा, कि बुद्धि का संबंध है, मन का संबंध होने से ज्ञान होता है। तो नैयायिकों ने तो सीधी सीधी बात कह दी है कि ये ज्ञान स्वरूप नहीं है, किंतु मन के संयोग होने से ज्ञान होता है, तो ज्ञान गुण वाला आत्मा है। और वेदांत कहता है कि ज्ञान स्वरूप है, तो ये बड़ी गहरी गुत्थी है, दार्शनिकों को बड़ा मतभेद है यहाँ। उसमें एक गहरी बात यह है कि जो बोध होता अपना है, उसमें मन बुद्धि के संयोग की जरूरत नहीं है। तो एक आदमी पढ़ा लिखा कहेगा कि गहरी नींद आ गई, उसमें अपना ज्ञान कहाँ रहा, उसमें तो ज्ञान कुछ नहीं रहा, क्योंकि सुखम अस्वाप्सम न किंचित अवेदिशम, मैं ऐसा सुख से सोया कि मेरे को कुछ भी पता नहीं था। तो ज्ञान के अभाव का ज्ञान है, वहां ज्ञान तो नहीं हुआ। तो अब कहते हैं ज्ञान के अभाव का ज्ञान है, इसमें संदेह है क्या, कि मेरे को कुछ भी ज्ञान नहीं था, कुछ भी पता नहीं था, बड़ा सुख से सोया, गहरा कुछ भी पता नहीं था। तो कुछ भी पता नहीं था इस बात का, इस बात में संदेह है क्या, इसमें संदेह नहीं है। तो ज्ञान क्या हो, जानवर थोड़े है ज्ञान, ये स्वयं का ही ज्ञान है। उस ज्ञान की मुख्य बात तो कि मेरे को कुछ पता नहीं था, ये बात। दूसरी बात आप देखो तो एक बड़ी मार्मिक बात है कि जब तक नींद नहीं आई तब तक मैं जानता था, और नींद खुलने पर मैं जानता हूँ। नींद आई इतने देर मेरे को पता नहीं था, ये तो होता है, पर तो नींद जब आ गई उसके बाद मैं नहीं था, अब जागृत में मैं आ गया हूँ, ऐसा किसी का भी अनुभव नहीं होता। अर्थात अपने अभाव का अनुभव किसी को नहीं होता। तो भाव रूप अपना ज्ञान उसको निरंतर रहता है, जागृत में रहता है, सुषुप्ति में रहता है, स्वप्न रहता है, जागृत में रहता है, वो ज्ञान अखंड रहता है इसका, वो ज्ञान है स्वयं का, उसमें मन बुद्धि आदि रही है। ये